ओम शांति।
दिल के अंदर गीत गाते रहे। दिल से गीत निकलता है या वो भी शांत है? क्या कहेंगे, गाते रहे गीत? बाबा आपने हमें क्या बनाया, क्या दिया, याद करते रहो, कितनी प्राप्तियां याद आएंगी। आई मन के अंदर कुछ यादें, या इन यादों से भी परे, हाँ? क्या कहेंगे, कांध से मुख से जवाब तो दे सकते हो, मुख से ना बोलो तो कांध से भी दे सकते हो, लेकिन क्लास में जवाब देना तो ये मौन नहीं टूटेगा। हाँ, क्या बोलते हो, आई प्राप्तियां याद, गीत गाते रहे या गीत सुनने से भी परे थे? गीत गाना बाप के प्राप्तियों के गुण गाना, बाबा कहते हैं ये भी याद है। याद के भिन्न भिन्न स्वरूप, याद के भिन्न भिन्न प्रकार, बाबा को भिन्न भिन्न रीति से याद करना, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप को, भिन्न भिन्न कर्तव्यों को, उनके द्वारा मिली हुई अनेक प्रकार की प्राप्तियों को फिर स्मरण करना, बाबा कहते हैं ये भी याद है। और ऐसी याद, जब हम बाप को, बाप से मिली हुई अनेक प्राप्तियों को याद करते रहेंगे तो अनुभव क्या होगा? तो अंदर से खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, और उस खुशी से और क्या होगा? उस खुशी से क्या होगा? और नशा रहेगा कि हाँ, किसकी संतान है, मेरा बाप कौन, जिस बाप से इतनी प्राप्तियां हुई अथवा इतनी प्राप्तियां संपन्न, मेरा बाप है, ये नशा बना रहे। याद की सबसे सहज विधि, सहज याद, निरंतर याद बनी रहे। हमारी याद स्वाभाविक स्वरूप ले ले, उनकी सहज विधि है कौन सी, हा? अगर हमें नशा रहता है, नारायणी नशा, बाप का नशा, अगर वो नशा चढ़ा रहता है तो वो नशा हमें सहज याद बना लेता है, हमारी याद को स्वाभाविक नेचुरल कर देता है। फिर हमें याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, या जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा भूल जाता है, इसलिए बाबा को बार बार वही बात समझानी पड़ती है, परंतु जब हमें नशा चढ़ जाता है तो याद भूलती नहीं, और वो नशा और भी याद को भी मजबूत करता है, निरंतर बना देता है, और उस याद के साथ साथ बाप के अंदर क्या क्या खजाने भरे हुए हैं, वो सहज भाव से हमारे अंदर इमर्ज होते जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग जब आए बाबा के पास, ये भी अभी कहते हैं कि बाबा के पास आए, उस समय तो हमारे पास ये शब्द भी नहीं थे कि हम बाबा के पास आए। हम लोग का तो ऐसा ही रहा, बाप के साथ साथ आए हैं, अर्थात बाप ने जन्म दिया, बाप के पास बड़े हुए, तो जैसे जन्म लेने से बाप की याद अथवा बाप का नशा बच्चे को बना रहता है, ऐसे हम लोगों को नशा सदा चढ़ा रहता था। और वही नशा होने के कारण, चाहे ज्ञान का विस्तार नहीं था, चाहे इतना स्पष्टीकरण नहीं था, स्वदर्शन चक्र भी उस समय नहीं था, बल्कि परमात्मा के परिचय की भी इतनी बातें नहीं थी। केवल एक ही आत्मा का लेसन, और वह आत्मा निश्चय करना भी अभी शब्द कहते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप बन गया। परमात्मा ने हमें जन्म दिया तो परमात्मा की संतान तो है ही आत्मा ना। हाँ, आत्मा का अभ्यास पक्का करते रहे और उसके साथ बाप का नशा होने के कारण सदा उस नशे में नेचुरल चलते रहे और बाप के प्राप्तियों का अनुभव करते चले, बल्कि आत्म स्वरूप की स्थिति सहज बन जाती थी। और सिर्फ स्थिति नई स्थिति के साथ आत्मा के अंदर क्या क्या शक्तियां, क्या क्या गुण भरे हुए हैं, वो अपने आप अंदर से इमर्ज होते थे। घंटे घंटे, दो दो घंटे एकांत में बैठे रहते थे, समय की सुध-बुध नहीं रहती थी। वो सारा जैसे कल की मुरली में था ना कि बाप आए, बाप ने इसमें प्रवेश किया तो बाप की कशिश थी, कशिश करते थे, और जो भी उस समय आए वो बाप की कशिश से समझो बाप के बन गए। तो वो बाप की कशिश ने ऐसा नशा चढ़ा दिया जो भूलने की तो बात ही नहीं रही। तो याद का सबसे सहज तरीका, सहज विधि, सदा हम उस नशे में रहें। और नशे की सहज विधि, नशे में हम रहे उसकी विधि, बाप के स्नेह में खोए रहें, बाप के अंदर गुण गाते रहें, बाप की महानताओं को याद करते रहें। तो अभी विशेष रूप से ये हमें समय मिला है, इसमें विशेष इस बात को ध्यान पे रखा है, कौन सा, कि ये हमारी है साधना भट्टी, योग साधना, परंतु मौन के साथ। वैसे भी देखो, जब साधना में जो भी बैठते हैं वो अपना लक्ष्य रखते हैं, इतने दिन तक हमें साधना में रहना है, तो वो लक्ष्य रखने से उतने दिन तक वो जैसे कि बीच बीच में खाते पीते तो होंगे ही, परंतु वो निमित्त थोड़ा समय बीच में करके, वो लोग जो हठ योगी, जब हठ योगी साधना अपनी रखते हैं तो कैसे कोठी के अंदर गुफाओं में बैठ जाते हैं और एकदम अपन को साधना में लीन कर देते हैं, उसमें ही तत्पर होते हैं, तो उसमें स्वाभाविक मौन हो जाता है। जब साधना में है तो फिर किससे भी बात, किसको देखना, कहाँ जाना होता ही नहीं है। हम लोगों का तो प्रैक्टिकल बाबा ने ऐसा ही कर दिया, जो चार दीवारों के अंदर 14 वर्ष न किससे मिलो, न कहाँ जाओ, न किसको देखो, बस आपस में ही अपना ही परिवार है। लेकिन समय के अनुसार और सेवाओं के अनुसार बाप कहता है मैं तो विश्व का पिता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा थोड़े ही पिता हूँ। तो विश्व का पिता हूँ, सारी विश्व को मुझे परिवर्तन करना है। पहले आपको परिचय दिया है, इसलिए आपको विश्व के सामने रखा है। ये हमारी योग साधना भट्टी, अर्थात इस बार विशेष रूप से मौन भट्टी का कार्य रखा है कि मौन में रहे। कहने में तो मौन आता है, मुख का मौन, लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं तो समझती है कि केवल मुख का मौन नहीं परंतु मन का मौन। अब एक तरफ हम कहते हैं संकल्प शक्ति है, और दूसरे तरफ अभी मन का मौन, संकल्प की हलचल बंद। दोनों का आपस में कनेक्शन है, हाँ? संकल्प शक्ति रूप तब ही बनता है जब हमारे व्यर्थ संकल्पों की हलचल बंद है, अर्थात मन की एकाग्रता है। एक ही शुद्ध संकल्प में निरंतर एकाग्र हो करके अंतर न पड़े और एक के ही स्नेह में कहो, उनके प्राप्तियों में कहो, उनके संबंधों के रस में कहो, हर प्रकार से केवल एक में ही हमारा पूरा ध्यान हो, एक बाप जो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान बाप में ही हमारा मन टिका हुआ हो, उससे मन हटे नहीं और कोई संकल्प उसमें डिस्टर्ब न करे, ऐसा एकाग्र मन अर्थात एक ही संकल्प में स्थित, ऐसी एकाग्रता को ही संकल्प उस समय, ऐसी जब हम एकाग्रता में है और कोई संकल्प, क्योंकि संकल्प शुद्ध ही उठेगा, संकल्प जब हम ऐसी एकाग्र स्थिति में है तो हमें ऐसा ही संकल्प उठेगा जो कल्याणकारी संकल्प होगा, जिससे कुछ कार्य होने वाला होगा, जो औरों के कल्याण के प्रति होगा, वो भी संकल्प उठा और फिनिश, उसका विस्तार नहीं। संकल्प शक्तिशाली तब ही माना जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं गाया हुआ है, भगवान को संकल्प उठा, सृष्टि रचनी है, ये विस्तार नहीं उसके पास, यज्ञ रचेंगे, ऐसे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई विस्तार नहीं, बस संकल्प उठा नई सृष्टि रचनी है। कैसे रचनी है, वो अपने आप उससे कार्य होता ही रहा, साकार में प्रवेश हुआ, उसको पहले ये सब किया, वो होता रहा, उसका संकल्प में विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप उसको अधिक संकल्प की तो आवश्यकता, वो तो है ही निराकार। वैसे तो कहा जाए निराकार है तो संकल्प करे और उसको रचना को रचे, ऐसे तो नहीं करेगा ना, परंतु निराकार में संकल्प उठा और उसका साकार के द्वारा कार्य होता रहा, जो साकार को भी पता नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो निराकार स्थिति का माना निराकार बाप उसका एक संकल्प इतना शक्तिशाली जो कैसे अपनी नई दुनिया रचनी है उसका कार्य कराता जा रहा है कराता जा रहा है कराता जा रहा है और सफलता पूर्वक होता जा रहा है। भल कितने भी विघ्न आए लेकिन कार्य अपनी सफलता को पाता ही जाता है। तो ये प्रत्यक्ष है कि संकल्प शक्तिवान है लेकिन संकल्प शक्तिशाली तब है जब एक ही संकल्प है उसके अंदर और कोई हलचल नहीं। ऐसा करे तो ऐसा हो जाए तो ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा इस प्रकार की इसको हलचल कहा जाएगा। तो कोई प्रकार की हलचल नहीं और एक ही संकल्प। ये तो बाप है ही सर्वशक्तिवान लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर्वशक्तिवान बाप संकल्प उठा कार्य अपने आप होता गया। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें भी बाप समान बनना है। अब हमारा संकल्प शक्तिशाली बन जाए जब पहले हमारी स्थिति ऐसी बने तो हमें पुरुषार्थ करना है हमें अटेंशन देना है अपनी ऐसी स्थिति बनाने का जिस स्थिति के साकार के अंतिम बोल कौन से निराकारी निरंकारी और निर्विकारी। तो निराकारी स्टेज के ये स्थिति है जो निरंकारी है और संपूर्ण निर्विकारी है। तो ये सिद्ध है निराकारी स्थिति बनी रहे उसके लिए पहले हमारी चाहिए संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। संपूर्ण निर्विकारी और कहा जाता है ज्ञानी मनुष्य का ये अहम बड़ा भारी शत्रु है। ज्ञानी का अगर शत्रु है क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है तो हमें उस पर भी ध्यान रखना है किस भी मात्रा में किस भी प्रकार से हमारे अंदर ये अहम भिन्न भिन्न रीति से हमारे अंदर जागृत न हो। तो ये जागृति न हो ऐसे संकल्प ही न उठे इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना आवश्यक है कि हमारी अंदर की जो मन की हलचल अर्थात संकल्पों में जो हलचल है वो हम अपने में आदत ही न डालें। जो आदत है पुरानी हलचल की क्योंकि ये तो कॉमन बात है ना सब कहते हैं मन बड़ा चंचल है मन को वश करना बड़ा मुश्किल है। अभी हम लोग तो ये नहीं कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं क्योंकि अभी राजयोग के द्वारा ये विधि तो सीखते जा रहे हैं और उससे मन की एकाग्रता क्या होती है ये हम जानते हैं अनुभव भी करते हैं। हाँ उसका अभ्यास पक्का हो और वो पक्का अभ्यास हमारा बनता जाए उसके लिए भी संकल्प शक्ति काम करेगी। हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प रखें कुछ भी हो जाए कैसी भी परिस्थिति हो कैसे भी विघ्न आए कैसी भी समस्या आए प्रकृति की कितनी भी हलचल हो हमें एक रस रहना है हमें अपने मन को एकाग्र रखना है। ये शुद्ध संकल्प और ये संकल्प दृढ़ हो तो संकल्प शक्तिशाली है। संकल्प शक्ति बन करके हमें मदद करेगा हमारा ही संकल्प परंतु उसके अंदर हम दृढ़ता रखते हैं तो वो दृढ़ता हमें मदद करेंगी जो हमें वो दृढ़ता बार बार याद दिलाती रहेंगी। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी आम रीति से हम कहते हैं ना परिस्थिति तो बदलेंगी। परिस्थिति का काम परिस्थिति माना ही पराई स्थिति, तो प्रकृति का काम है परिवर्तन होना और पुरुष का काम है आत्मा का रूप सदा आत्मा ही है। जब प्रकृति का साथ लेती है, प्रकृति के साथ हलचल में आती है, तब उसके रूप में है वही रूप, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, पर उसकी क्वालिटीज में परिवर्तन आता है। कब? जब प्रकृति का साथ लेके और प्रकृति के साथ हलचल में आती है, तब उसके रूप में परिवर्तन आता, क्वालिटीज में परिवर्तन आता है, रूप उसका वही है। तो जब मैं जो हूं और जैसी हूं, अंदर में हमें ये पक्का करना है मेरा रूप क्या और मेरा बाप कौन। बस ये अंदर हमारा चिंतन चलता रहे और उसमें, क्योंकि जितना हम चिंतन, जिस बात का हम चिंतन करते रहेंगे, वही चित्र हमारा बनता जाएगा। अगर हमें ऐसा बनना, बाबा कहते ना तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, अपने सामने रखो लक्ष्मी नारायण का चित्र, उस पर विचार करते जाओ क्या इसके गुण है, कैसे इनकी चलन है, सत्युग में कैसे थे, क्या करते। तो जितना उस पर चिंतन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो क्वालिटीज आपके आगे स्पष्ट होती जाएंगी और अपने में भरते जाएंगे। इसी प्रकार से मैं जो हूं और जैसा, मौन वृत्त, वृत्त भी कहा जाता है ना, वृत्त माना कोई भी बात के लिए हम दृढ़ता रखते हैं, ये करना ही है, फिर उसके लिए वृत्त में तो त्याग करते हैं। अभी मौन वृत्त के अंदर हमें त्याग भी करना है, वृत्त रखना है, तो त्याग भावना भी हो और त्याग के साथ साथ कहा जाता है जितना त्याग उससे अधिक गुना भाग्य मिलता है। वैसे तो हमें भाग्य मिल ही चुका है, परंतु जो भाग्य बाप ने हमें दिया है, वो भाग्य प्रत्यक्ष रूप में उन्हीं क्वालिटी सहित हमारे कर्मों में प्रत्यक्ष हो, उसके लिए हमें अंदर ही अंदर इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए यह मौन भट्ठी अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में हम चले जाए, गुफा के अंदर चले जाओ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे, ये हमारी जो भी स्थूल कर्म इंद्रिया है, मुख की कर्म इंद्रिया, अंतर्मुख, इस सब मुख की जो कर्म इंद्रिया है, कौन सी है, विशेष कर्म इंद्रिया, इस सब मुख की जो हमें धोखा देती है। कहा जाता है मन बड़ा चंचल है, मन के बाद कर्म इंद्रियों में कौन सी कर्म इंद्री चंचल है, देखो सब जानते हैं है? तो ये आंखें जो धोखा देती हैं, और आंख के बाद कान, और कान के बाद मुख, ये मुख की कर्म इंद्रिया, आंख पहला मन सूक्ष्म संकल्प, फिर ये आंख कान और मुख, दूर से किसका भी आवाज सुनेंगे ध्यान जाएगा। आंख कहते हैं ना, इसलिए मतलब आंख जो देखती है, देखती आंख है, चलायमान भी होती है, लेकिन आंख के चलायमान होने से मन बड़ा चलायमान हो जाता है, उसके प्रति संकल्प चलाने लग जाते हैं। परंतु अगर हम आंखें को अंदर आत्मा को ही देखे, बाहर का देखना हम बंद कर दे, क्योंकि संकल्प से ही तो देखना होता है, संकल्प ही जाता है ना, भले आंख गई पर अगर मेरा संकल्प नहीं चलता है तो देखते हुए ना देखना हो जाता है। तो ये जो हमारा संकल्प जाता है, कर्म इंद्री के साथ संकल्प भी उधर जाता है, हम उसको अंदर अंतर्मुख मन में अपनी आत्मा में लगा दें, चाहे हम अपने परमात्मा में लगा दें, तो ये आंखें हमें धोखा नहीं देंगी। कान जो आवाज सुनता है फिर उसे अपने शक्य कुछ भी आवाज सुनेगा, पूरी बात अगर नहीं सुनी तो इसने शायद ऐसा बोला होगा, शायद फलाने के लिए, शायद मेरे लिए, होता है ना ऐसा, तो ये भी तो धोखा ही आता है ना अपने को। और मुख से भी बोल, किसके प्रति कुछ भी है भाव तो बोल देते हैं, तो ये मुख की ये कर्म इंद्रियां, इन सब को अंतर्मुख, इस मुख को बाहर के मुख के कर्म इंद्रियों को अंदर भेज दो, अर्थात ये सब कर्म इंद्रियां अंदर खोजने में लग जाए, आंखें बाहर के बदली अंदर, आत्मा, आत्मा का घर। बाबा कहते हैं क्या क्या याद करो, बाप, घर और वर्षा। बाप को याद किया तो स्वयं परमात्मा याद आया, तो उसकी संतान मैं आत्मा ही हूं। आत्मा आत्म स्थिति में सहज स्थित होना, मैं हमेशा कहती हूं आत्म अभ्यास करने में मेहनत लगती है, मैं आत्मा हूं, निराकार को देखूं, निराकार स्थिति में रहूं, लेकिन उसकी सहज विधि है हम बाप को याद कर ले तो परमात्मा की संतान आत्मा ही है, उसमें तो दूसरा जवाब है ही नहीं ना। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए भी परमात्म निश्चय, परमात्मा मेरा बाप है, परमात्मा की मैं संतान हूं, सहज भाव से स्वयं आत्म अभिमानी बन जाते हैं। और वर्तमान समय बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई ये अभ्यास करो। तो ऐसा थोड़े ही कि आप देखेंगे तो आपको बिरकुति से कोई चमकती हुई आत्मा दिखाई पड़ेगी, पड़ेगी दिखाई ऐसे, परंतु ये जो संकल्प शक्ति हमारी है, मन के अंदर जो ये भाव आता है ये ऐसा है, हमारा प्रकृति पे ध्यान जाता है, वो हमारा बदल करके हमारी संकल्प शक्ति अर्थात हमारे मन के अंदर फौरन ये स्मृति आए, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा है। जैसे हमारा आत्मा के प्रति ध्यान, जब आत्मा की स्मृति आई तो हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है, तो बाप की भी याद आई। और बाबा कहते हैं परमात्मा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, तीनों रूपों से बाप को याद करो तो उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें अंदर ही अंदर याद आती रहेंगी, मन उसमें मग्न हो जाएगा। जब मन उसमें मग्न है तो बाहर की कोई भी बातें सुनते हुए भी सुनेगा नहीं, देखते हुए भी उसका असर प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। तो यह मौन भट्टी हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाना है, ऐसा हम स्वयं को समझ करके, जैसे कि चलते हैं हमें पक्का याद है, शुरू शुरू में जब हम लोग आए हैं थे तो हम लोग छोटे, अब वो बातें याद करते हैं तो कहते हैं इतने छोटे थे और इतनी ऊंची ऊंची बातें हम कैसे अभ्यास करते थे, परंतु ये कहेंगे बाप की कमाल है, जो हम छोटे हैं ये हमें याद ही नहीं रहता था, आयु हमारी कितनी है ये भी नहीं याद, ये तो हम जब निकले हैं बाहर तब ये सब बातें हैं, कि कोई पूछते हैं करते हैं तो सुनाने के लिए पूछ पूछ करके याद कर लिया, बाकी हम गए तो ये बिल्कुल ही भूल गया था। तो हमें याद है जब हम आते थे वहां, बस वहां से सुन करके जब जाते थे अपने घर में, पहले तो आना जाना था ना शुरू में सत्संग में, सत्संग कहते थे उस समय, बस वहां से निकले दरवाजे से और जाएंगे अपने आप में खोए हुए, न इधर देखते न उधर देख, कहां भी हम इधर उधर नहीं देखते, बस सीधा रास्ता अपने आप में अंदर में जो कुछ सुन के आए हैं उसको अंदर मनन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये भी अभी कहते हैं। उस समय एक ही धुन थी, मैं आत्मा हूँ, और कुछ भी इधर उधर न किसको देखते थे, न किसके प्रति संकल्प चलता था, न कोई सुन, अगर कोई हमें पहचान करके खड़े भी रहेंगे तो भी जैसे हमने देखा ही नहीं, चलो सामने कोई खड़े हो गया। इतना विस्तार है, वो विस्तार सारा हमारे बुद्धि में भर गया है, भर गया है ना। बाबा तो कहते हैं मैं ज्ञान सागर, बच्चों को सारा ही मैंने ज्ञान दे दिया, जितना ज्ञान का खजाना मेरे पास है मैंने सारा बच्चों को दे दिया है। तो हम बच्चों के अंदर बाप के ज्ञान का खजाना तो भर गया है, अब वो विस्तार जो भरा है उस विस्तार का सार स्वरूप बन जाना है। वैसे ही भी बीज को सार कहा जाता है ना, बीज में सारे झाड़ की शक्ति भरी हुई है, इतने छोटे से बीज से इतना झाड़ निकलता है, भिन्न भिन्न प्रकार की डाल, टालियां, पत्ते, फल, फूल, रंग बिरंगी कितनी चीजें निकल जाती है। अब ये ज्ञान के विस्तार, ज्ञान का सारा विस्तार हमारे में बाबा ने भर दिया, तो बुद्धि में विस्तार भर गया है, लेकिन विस्तार का सार स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप हम बने रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अंदर जैसे अंतर्मुक्ता की गुफा अर्थात स्मृति स्वरूप बने रहें। हम कहते हैं यह मौन भट्ठी हमें इसलिए मिली है कि हम अपने संपूर्ण स्वरूप का अंदर ही अंदर आवाहन करते रहें, और आवाहन करते 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 अपना संपूर्ण स्वरूप अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करें। जब हमें वो अपना संपूर्णता का अनुभव हो तो स्वाभाविक सहज भाव से हमारे कर्मों में वो दिव्यता, वे गुण, जिन गुणों के लिए एक एक गुण के लिए हम मेहनत करते हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना चलो योग में ये अभ्यास करते हैं सारा दिन, आज हम इस गुण का अभ्यास करेंगे, आज हम इस शक्ति का अभ्यास करेंगे, तो एक एक के लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी कभी सफलता मिलती है, कभी पूरी सफलता मिलती है, कभी अधूरी मिलती है, होता है ना ऐसा, क्योंकि अभी तक तो हम पुरुषार्थी हैं, कंप्लीट सतो प्रधान तो नहीं बन चुके हैं, लेकिन समय के अनुसार अभी समय भी नजदीक है। नजदीक क्या, बाबा कहते हैं समय तो, समय ने अपनी रफ्तार से समय आकर के हमारे सामने अपना अंतिम स्वरूप लेकर के खड़ा हुआ है, लेकिन रुका है हम बच्चों के लिए, इसलिए अंदर ही अंदर हमें अपनी संपूर्णता का आवाहन करते हुए, जब इतनी बड़ी चीज हम प्राप्त करने चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम भी तो इतना करना पड़ेगा, परंतु ये हमारा परिश्रम कोई बाहर का नहीं है, कोई स्थूल रीति से नहीं है, ये परिश्रम भी अंदर का ही है, क्योंकि चेतन शक्ति अंदर है, चेतन शक्ति ही इस शरीर के द्वारा हर कार्य कराती है। जैसी चेतन शक्ति, अगर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा सतो प्रदान हूं तो हमारी कर्म इंद्रियों से सदा ही दैवी गुण संपन्न कर्म होते रहेंगे। अगर मैं चैतन्य शक्ति सर्वगुण संपन्न हूं तो हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा ऐसे संपन्नता के ही कर्म होते रहेंगे, चाहे हमारा संकल्प भी सदा ऐसा श्रेष्ठ ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी ऐसा अशुद्ध व्यर्थ संकल्प उठेगा ही नहीं। तो इस मौन भट्टी के द्वारा हमें यह दृढ़ता रखनी है कि जो कुछ भी अब तक हमें व्यर्थ समझ में आता है, बाबा ने तो कहा ही है बच्चे व्यर्थ से मुक्त। केवल व्यर्थ से मुक्त ही तो नहीं कहा, व्यर्थ से मुक्त तो मैं समझती हूँ इससे पहले भी कहा था, और अब सर्व बंधनों से मुक्त। ये अपना भी तो बंधन है, अपने में कोई भी आदत है, हम आदत के वश कुछ भी करते हैं तो ये भी तो हमारा बंधन हुआ ना, हम अपनी ही आदत के वश है। अब कहते हैं आदत माना जो चीज ना होनी चाहिए, और हम ये भी कहते हैं ना हम चाहते नहीं है परंतु हो जाता है, हो जाता है क्योंकि उसकी आदत है। आदत माना जिस बात को हम बार बार करते आए हैं वो पक्का हो गया है, तो जो बार बार किया है वो अपने आप होता है। तो अभी इसको हम परिवर्तन कर ले, बार बार हम अपने अंदर स्मृति स्वरूप का अभ्यास करें तो हमारे से हमारे में स्मृति बनी रहेंगी और हमारे से स्मृति स्वरूप ही कर्म होते रहेंगे। बोल में भी स्मृति स्वरूप बोल आएंगे, अर्थात बाप समान बोल हमारे बन जाएंगे। बाप के बोल को महावाक्य कहा जाता है, महावाक्य अर्थात वे वाक्य जिनसे महान कार्य होता है। जब बाप के बोल ऐसे महान कार्य अर्थ ही निकलते हैं, कितना महान ते महान कार्य, हम तमो प्रधान आत्माओं को एकदम सतो प्रदान कर देते हैं। कितना महान कार्य, सारी तमो प्रधान सृष्टि पतित सृष्टि को एकदम पावन बना देता है, कितना महान कार्य। तो बाप के महावाक्य है, हमें बाप समान बनना है, इसलिए बाबा ने हमें ये मौका दिया, क्योंकि अभ्यास थोड़े समय के लिए एकाग्रता से किया जाता है तो वो अनुभव जब हो जाता है वो अनुभव हमारा अभ्यास सदा के लिए कायम कर देता है, और उस अभ्यास में फिर वृद्धि आती जाती है, उस वृद्धि के कारण वो अनुभव स्थायी बन जाता है। अर्थात जो हम बनना चाहते, जो हम प्राप्ति करना चाहते, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ की आशा है हम ये बने, और हम तो जानते हैं कि बाबा भी चाहते हैं मेरे बच्चे ऐसे बने। देखो अभी हम सुनते रहते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम बच्चों के लिए रुका हुआ हूँ, बस अब कब मेरे बच्चे आवे तैयार होके तो मैं गेट खोलूं और फिर से जा करके अपने घर में सब विश्राम करें। अब बाप हमारे लिए रुका है, ऐसी ऐसी बातें अपने आप से हम करते रहे, अपने अंदर सोचते रहे, बस एक ही लक्ष्य हमारा, कौन सा गीत है ना एक हमारा, अब एक ही लक्ष्य है हमारा कि हम संपूर्ण बन जाए। संपूर्ण बनने की क्या क्या क्वालिटीज है हम उसको अंदर सारा वर्णन करें, उसको अंदर रिवाइज करें, और रिवाइज करके फिर अपने से भेद करें, और उस संपूर्णता को हम कैसे उस क्वालिटी को अपने में भर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास है। अंतर्मुखता की गुफा में रहकर हमें क्या करना है जो संपूर्णता के लक्षण है, उन लक्षणों को एक एक लक्षण को हमें विस्तार से समझ करके, उस विस्तार को स्मृति में ला करके फिर अपने से देखना है किस प्रकार इस सारे विस्तार को मैं अपने कर्म इंद्रियों में ला सकता हूं, अपने आप से, अपने से वो विधि निकालनी, क्योंकि विधियां बाबा ने सब बता दी हैं, सब हमारी सुनी हुई है, समझी हुई है, बीच बीच में अभ्यास किया हुआ है, याद करते रहते हैं, वर्णन तो करते ही रहते हैं। जब वो सब विद्या हम वर्णन करते रहते हैं, समझ चुके हैं, तो फिर उन विधियों को, उन विधि से प्राप्ति, उन विधि की सफलता सदा हमारे पास रहे, उसके लिए जितना बार बार उस विधि का अभ्यास करते रहे, तब तो उसकी सफलता हमें प्रत्यक्ष स्वरूप दिखावे, हमारे सामने प्रमाण बन जाए। देखो, जिस विधि को हमने बार बार अभ्यास किया है, उसका सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो क्वालिटी हमारे अंदर सहज आ जाती। जैसे हम कहते हैं ना, जो आदत, आदत क्या हुई, बार बार उसको हमने कर्म में लाया, तो वो पक्की हो गई। अब छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं छूटती है, क्योंकि कर्म स्टैंप लगा देता है, कर्म से संस्कार बन जाता है, और बार बार वही कर्म होता है तो वो संस्कार बन जाता है। अब संस्कार को परिवर्तन करना, ये तो आत्मा की शक्ति ही उसको परिवर्तन कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। बाप ने हमें नॉलेज दी, बाप ने हमें शिक्षा दी। देखो, दो चार दिन पहले बाबा ने क्या बताया, मैं तुमको सुख नहीं देता हूं, सुख का रास्ता बताता। अब रास्ते पर हम चलेंगे तो सुख अनुभव करेंगे ना। आम रीति से तो हम कह देते हैं, शिलू वो नीचे से ना चेकिंग वाला है। तो बाप दिन प्रतिदिन कितना क्लियर कहते हैं, सुख का रास्ता बताता हूँ, चलना तो हमें है ना, क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्य है। बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं सर्वशक्तिवान हूं और बस मैं तुमको दे दूंगा, तुम भी चैतन्य हो, आत्मा भी शक्तिशाली है, आत्मा में भी अपनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को यूज करो, काम में लाओ। अर्थात पहले अपनी शक्ति को पहचानो, पहचान करके और काम कराते जाओ, जितना करेंगे उतना पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये तो हिसाबी हिसाब अनादि ये कायदा नियम बना हुआ है, तो नियम के अनुसार तो हर कार्य होता ही रहेगा। हम भले कुछ भी कहें, लेकिन होगा तो नियम, अनादि नियम है, अनादि नियम अपने आप काम करता रहता है। इसलिए हमें यह गोल्डन चांस मिला है, बल है 3-4 दिन कोई भी अभ्यास के लिए। पहले जैसे वो मॉडल बनाते हैं तो छोटा बनाते हैं ना, फिर उसका बड़ा बनाते हैं, प्रैक्टिकल में बड़ा करते हैं, लेकिन वैसे दिखाने में छोटा बनाते हैं। तो ये भी छोटा माना, थोड़े दिन हमको ये मौन भट्टी का अभ्यास मिला है कि देखो संपूर्णता नॉलेज हमारे पास है, उसका पूरा विस्तार हम जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, परंतु वो स्मृति बनी रहे, जिस स्मृति से हमारे स्वरूप से वो कर्म होता रहे। जब स्मृति स्वरूप कर्म हो, संपन्नता के आधार पर कर्मों में दिव्यता हो, तो हमारे संस्कार दिव्य बने। कर्मों के सिवाय हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। भले समझो बाबा कहते हैं मेरी याद से तुम्हारे विक्रम भस्म होंगे, विक्रम तो भस्म होंगे, श्रेष्ठ कर्मों का फल है दिव्य संस्कार। तो विक्रम भस्म हो करके क्या करेंगे, कर्म इंद्रियों से कर्म तो करेंगे ही ना, और होता ही रहता है ना। अगर हम दिव्य कर्म, दिव्य गुण संपन्न कर्म न करेंगे तो कोई क्या कर्म होगा, जो पुराने हैं, फिर पुराने संस्कारों के अनुसार कर्म होगा। इसलिए अंदर ही अंदर हम इस बात को अपने से पक्का करते जाएं, पक्का करते जाएं। जो ज्ञान मिला है, बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, ज्ञान की जितनी धारणा होती जाएंगी तो अंत में बाप समान बनेंगे। अब धारणा माना, जीवन के कर्मों में आना। धारणा माना केवल समझना नहीं, समझ तो हमारे पास बहुत है, बुद्धि में कितनी बातें भरी, बुद्धि में सारा ज्ञान भरा, पर वो इमर्ज रहे हर समय पर, जैसा समय जैसी आवश्यकता वैसा हमारा इमर्ज होकर के फिर कर्मों में आवे। कर्म इंद्रिया वो उसी प्रकार से दिव्य कर्म करे, ये वृत्ति और दृष्टि, दृष्टि में भी वो दिव्यता रूहानियत सदा बनी रहे हर बात के लिए। देखो अव्यक्त बाप दादा हमें कहते हैं सदा, जब भी लास्ट में टाइटल देते हैं तो सदा के लिए हमको बोलते हैं, सदा पर अंडरलाइन होता है। अब सदा ये हमारा अभ्यास, ये हमें चांस इसलिए मिला है, अंतर्मुक्ता का क्या फायदा है, अंतर्मुक्ता कितना हमें श्रेष्ठ बना सकती है, ये हम स्वयं से अपने आप वो रिजल्ट देखें। इसलिए सब रीति से सब तरफ से फ्री होकर के दादी ने ये चांस दिया है। अब और कुछ नहीं सोचो, न कोई सेवाएं, न और कुछ बातें, अपनी कमजोरियों को भी सोचो नहीं, संपूर्णता को सामने रख करके उसको भरते जाओ। ये संपूर्णता मेरे में कैसे भरे, किस विधि से मैं इसको अपने में भर सकता हूँ, अर्थात अपने को ऐसा बना सकता हूँ, किस प्रकार से इस संपन्नता का कर्म मेरे अनुकूलता अनुसार मैं कर सकता हूँ, ये स्वयं ही स्वयं जज करे और स्वयं ही स्वयं को बताए इस प्रकार हो सकता है। क्योंकि हर एक का कार्य अपना, हर एक के करने का रूप अपना, हर एक की विधि, विधि बाबा ने बताई है, लेकिन विधि को अप्लाई करना, वो जैसी जैसी उसकी अंदर की वृत्ति है उस अनुसार उसको परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं स्वयं को तो हर एक जानता है, चलो बाबा को जितना भी बताता है उससे अधिक हर एक स्वयं को जानता है। ऐसे कहावत है, सागर का अंत पा सकते हैं परंतु मनुष्य का अंत पाना मुश्किल है, ये कहावत है एक। इसलिए जितना हम स्वयं स्वयं को समझते हैं उसके अनुसार अब हम अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके संपन्नता का आवाहन करें और अंदर ही अंदर अपनी संपन्नता को प्रत्यक्ष करें। जितना हमको स्पष्ट ज्ञान है संपूर्णता का वो अंदर एक रूप बना ले, अंदर उसका पूरा दृश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाए तो हमें पता चलेगा अभी ये बात मेरे में कहाँ फिट हो सकती है, कैसे हो सकती है। जैसे वो नक्शा बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हर एक जगह फिट करते, भाई ये हमको चीज चाहिए। मकान बनाते हैं तो भी हम पहले अपनी बता देते हैं ना, हमको ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो बुद्धि में रख करके फिर बनाएंगे आउटलाइन, फिर उसमें इधर ये करो, इधर ये करो, इधर, तो जो आवश्यकताएं हैं उसको भरते जाते हैं, कैसे बनेंगी क्या, फिर देखते हैं, ठीक नक्शा बनाया, अभी इसमें ये और चाहिए ये। ऐसे हम अपना अंदर ही अंदर अपने संपूर्णता का स्वरूप बना ले, उसके अंदर जो जो कर्म है, जो जो संकल्प है, जो जो विचार है, जिस जिस प्रकार से हमारे आगे परिस्थितियां आती है वो तो है ही, पता ही है, उस अनुसार हमारे में क्या क्या चाहिए वो हम समझते हैं। अब जो चाहिए वो हमको अपने में भरना है, लक्ष्य हमारा ये कि हमें संपूर्ण बनना है। तो ये मौन भट्टी हमारी प्रैक्टिकल में अंतर्मुक्ता की गुफा में हमें रहना है। ये जो हमारी स्थूल कर्म इंद्रिया, जो और कर्म, ये मोटी कर्म इंद्रिया, हाथ पांव ये सब, और ये उससे सूक्ष्म मन और बुद्धि, इन सब का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। जैसे सुना है साकार बाबा ने अपना शुरू का अनुभव बताया था, मैं आत्मा अपने मन से बात करता हूँ, मन वजीर मैं ये चाहता हूँ, अब तुमको ऐसा करना है। जब वो वजीर है मेरा, उसको मेरी बात माननी है, मैं मालिक हूँ। मालिक बन करके हम अपने मन को ऑर्डर करते हैं, संकल्प को। अब कोई संकल्प नहीं करना है, बस एक बाप की याद में रहना है। चाहे उसको ये कहो आज बाप के से जो प्राप्तियां हैं, उन सारी प्राप्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो और उस प्राप्तियों में मग्न हो जाओ। देखो मन कितना मग्न होता है। फिर नजर रखो उसके ऊपर, साकी होकर के अंदर, मैं आत्मा निराकार अर्थात ज्योति स्वरूप हूँ। तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, प्रकाश के अंदर हर वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ऐसे मैं अंदर आत्मा प्रकाश रूप हूँ। अब अपने मन की हरकतों को देखती हूँ, पर उसको पहले एक काम तुमको आज ये करना है, अब उसमें ही लगे रहो। अब देखो वो क्या कर, फिर हम मालिक बन के बैठ जाए, हमको फिर कराना नहीं है कुछ, बस मालिक बन के बैठे। ऑर्डर दिया है, खाली नजर रखनी है, अब मन को ये करना, बस वो काम करता रहे, बाकी शांत। ऐसे अंदर ही अंदर हम स्वयं को साक्षी बन के देखें, साक्षीपन की स्थिति बना ले, अर्थात मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप, अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां शक्तियां जिसको हम बोलते हैं, संकल्प शक्ति और स्मृति की शक्ति, वो भी ऐसी बन जाए जिसके अंदर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये हमारी यथारथ बन जाए, बढ़ जाए। चाहते तो हम सब यही है, लेकिन वो भी बनेगी मन की एकाग्रता से। एकाग्रता ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमें स्वयं के अंदर एकाग्रता की शक्ति ऐसी बढ़ानी है जो हमारी स्मृति को सदा कायम रखे, स्मृति स्वरूप बन करके। और फिर बुद्धि जब स्मृति स्वरूप है, सदा हमें अपना आदि अनादि स्वरूप याद है, तो वो हमारे आदि अनादि स्वरूप की दिव्यता, आदि स्वरूप की दिव्यता और अनादि स्वरूप की शक्ति दोनों ही अंदर काम करती है, तब हमारी बुद्धि दिव्य बन करके सदा यथारथ निर्णय दे सकती है, उसके अंदर यथारथ परखने की शक्ति जागृत हो सकती है। ये अंदर ही अंदर जब हम अपनी संकल्प शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और बुद्धि रूपी स्मृति, जिसको हम स्मृति की शक्ति भी कहते हैं और सोच शक्ति कहते हैं, परंतु अभी ज्ञान के अनुसार हम समझते हैं स्मृति की शक्ति ये अधिक उसके लिए ठीक शब्द है। उसको हम सदा स्थायी रखने का प्रयत्न करें तो हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। दिव्य बुद्धि ही एकाग्रता की शक्ति से, दिव्य बुद्धि ही त्रिकालदर्शी बुद्धि बन करके हर कार्य, बाबा कहते हैं करने से पहले तीनों कालों को समझ करके और कार्य करो, तो ये शक्ति फिर हमारे में जागृत होती है, उससे फिर हमारे कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता आ जाती है। जिन दिव्य कर्मों के आधार पर हमारे संस्कार दिव्य बन जाते, अर्थात टोटल हमारी जीवन का वो परिवर्तन जो हमारी सतो प्रधान जीवन है, उस सतो प्रधान जीवन का अनुभव संगम पर हम इस अंतर्मुक्ता की गुफा के द्वारा कर सकते हैं। तो थोड़े शब्दों में ऐसा ही कहूंगी, ये हमारी मौन भट्टी हमें संपूर्णता का आवाहन करने के लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना सिखाती है, और यह अंतर्मुक्ता की गुफा हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति जागृत करेंगी, जिस एकाग्रता की शक्ति से दिव्यता और श्रेष्ठता हमारे कर्मों में सहज हम ला सकते। ऐसे अगर हम अपने अंदर, इसके लिए ये हमारा इसी प्रकार चिंतन चलता रहे और अति जागृत होती जाए, उसके लिए स्वचेकिंग की कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, जो ये रात को आपको देंगे जाएंगी। जब श्रेष्ठता बढ़ती जाएंगी तो छूटने वाली चीजें वो छूटती जाएंगी, और हमें सहज अनुभव होगा कि बरोबर संपन्नता भरने से कमियां अथवा कमजोरी खत्म हो जाती है। मैं समझती हूँ आप सबके पास भी यही लक्ष्य होगा कि हमें अब समय नजदीक है। आज भी बाबा ने कहा, समय की रफ्तार और अपनी रफ्तार देखो, हमें हमारी रफ्तार तेज होनी चाहिए। बाबा ने नहीं, कल शायद गुलजारदारी ने कहा कि हमें समय की रफ्तार से पहले हमारी रफ्तार तेज हो। ऐसे स्वयं स्वयं से बातें करते, स्वयं को देखे अंदर ही अंदर खुशी का पारा चढ़ता रहे, बाप का नशा चढ़ता रहे, और उस नशे के आधार से शक्तिशाली बनकर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान बना दे। ओम शांति।